ओम शांति। पहली लाइन में जो माताएं बैठी हैं, कृपया टीचर्स के लिए जगह खाली करने का कष्ट करें। पहली लाइन में बैठे हुए सभी टीचर्स बहनों के लिए जगह खाली करें। हमारे बीच भट्टी के प्रथम दिवस पर एक बहुत अच्छा खजाना हमें मिलने जा रहा है। विषय है जमा का खाता बढ़ाने की विधि। परम आदरणीय डॉक्टर सविता बहन इस विषय को हमारे लिए स्पष्ट करेगी। डॉक्टर सविता बहन, आपने 74 से बाबा का ज्ञान प्राप्त किया हुआ है। एक चिकित्सक होने के नाते आपने कोटा, डूंगरपुर, उदयपुर में भी अपनी सेवाएं दी है। 1989 से आप समर्पित रूप में अपनी सेवाएं इस यज्ञ को दे रहे हैं। 1991 से 2000 साल तक आपने ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में एक मेडिकल ऑफिसर के रूप में अपनी सेवाएं दी। 2000 से 2007 तक हमारी तत्कालीन मुख्य प्रशासिका दादी प्रकाशमणि जी के अंग संग रहकर उनके स्वास्थ्य लाभ हेतु आपने विशेष सेवाएं दी। वर्तमान समय आप महिला प्रभाग के मुख्यालय संयोजिका के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। महिलाओं के उत्थान, महिलाओं के उत्कर्ष, बेटी बचाओ जैसे अनेक सफल अभियान आपने कोऑर्डिनेट किए हुए हैं। ऐसी बहुमुखी प्रतिभा की धनी सविता बहन, आपने देश विदेशों में जाके भी अपनी सेवाओं का लाभ ब्राह्मण परिवार और सेवा हेतु अनेक आत्माओं को दिया है। तो आज हम सुनेंगे जमा का खाता बढ़ाने की विधि, और उस क्लास हेतु हमारे बीच पधारी सविता बहन, हम आपका दिल से स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। तो चलो, हम अपनी तपस्या हेतु आए हैं, हम अपनी साधना हेतु आए हैं, तो तपस्या और साधना की पहली परम आवश्यकता है एकाग्रता। एकाग्र मन, एकाग्र चित्त और एकाग्र तन से हम चलो सुनते हैं जमा का खाता बढ़ाने की विधि।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। संगम योग, बाबा कहते हैं हम बच्चों के लिए पूरे कल्प की कमाई करने का योग है। इसे धर्माओ युग भी कहते हैं। अभी रविवार को हमने मुरली में सुना तो बाबा ने कहा कि पूरे कल्प हमने सारे खाते खाली कर दिए। था ना कि अगर हम कुछ जमा नहीं कर रहे और खाते जा रहे हैं तो खाता खाली हो जाता है। तो तन भी कैसा हो गया, मन भी कैसा हो गया, धन का भी क्या हाल है, और संबंधों में भी कैसे हालात हैं, कि हम सभी संबंधों में भी एक दो को कांटे लगाने वाले, माना दुख देने वाले बन गए। तो अभी मैं उसका पूरा वर्णन नहीं कर रही हूँ, हम सब जानते हैं कि हम क्या बन गए सब खाली करके। तो अब बाबा पुनः हमें विधि बताते हैं कि जितना हम शिव बाबा की श्रीमत के अनुसार श्रेष्ठ कर्म करते हैं, सत्कर्म करते हैं, वो एक का पदम गुना जमा करने वाला है। फिर यहाँ जो हिसाब है जैसे का तैसा नहीं है, नॉर्मली होता है जैसा करेंगे वैसा पाएंगे, जितना करेंगे उतना पाएंगे, लेकिन बाबा जब आते हैं तो इस हिसाब को बदल देते हैं। सिर्फ संगम युग में ये हिसाब बदल जाता है, एक करेंगे और कितना पाएंगे, पदम गुना, कदम में पदम है। तो बाबा इसलिए कहता है ये अविनाशी बैंक है, संगम युग की अविनाशी बैंक है, ये इस समय ही खुलती है। तो दुनिया में कोई भी इतना बड़ा बिजनेसमैन नहीं हो सकता कि वो एक कदम उठाए और पदम कमा ले। हो सकता है ना, किसी की बहुत फैक्ट्री है, मिल है, इंडस्ट्री है, तो एक दिन में कुछ करोड़ कमा लेगा, लेकिन एक कदम उठाए बाबा की याद में और पद्मों की कमाई जमा हो जाए, ऐसा नहीं। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, बड़े से बड़े बिजनेसमैन हम हैं। अब देखने में तो साधारण है ना, साधारण माताएं हैं, साधारण भाई हैं, भगवान भी गरीब निवास कहलाता है। तो अभी तो दुनिया की नजरों में हम क्या हैं, लेकिन बन क्या रहे हैं, पद्मा पदम पते। तो इतना हमें अपनी कमाई का नशा और खुशी होनी चाहिए कि एक जन्म नहीं 21 जन्म तो बाबा की गारंटी है, और फिर वो भी नहीं, पूरे कल्प की कमाई हम यहीं कर लेते हैं। पूरे कल्प तक हमारा ये भाग्य चलता रहता है, लेकिन उसकी सहज विधि जो बाबा ने बताई हमें, जो भी बाबा ने हमें खजाने दिए हैं, जितना हम उन्हें यूज करते हैं, जितना हम उन्हें कार्य में लगाते हैं, उतना वो बढ़ते जाते हैं। स्थूल धन तो जितना हम यूज करते जाएंगे वो कम होता जाएगा, लेकिन ये अविनाशी खजानों की विशेषता है, जितना यूज करेंगे उतना और वो बढ़ते जाएंगे। तो बाबा हमेशा कहते हैं कि मैं बच्चों को नंबरवार नहीं देता हूँ, सभी को बाबा एक जैसा देता है, क्योंकि एक ही के द्वारा मिलता है। तो भगवान के पास कोई कमी नहीं है, ऐसा नहीं है जो 85 साल से आए उन्होंने तो पूरा ले लिया, अभी तो हम 1 साल से ज्ञान में आए हैं या कुछ महीनों से हम ज्ञान में आए हैं, तो क्या हमें भी उतनी प्राप्ति हो सकती है, क्या कहेंगे। हाँ, कुछ भाई बहने होंगे ना जो अभी पहली बार मधुबन में आए हैं, वो हाथ उठाएं जो पहली बार आए हैं। देखो कितने, 25% तो पहली बार ही आए हैं ना, मधुबन ही पहली बार आए हैं। और जिनको ज्ञान में चलते हुए अभी 1 ही साल हुआ है वो हाथ उठाएं, वो भी हैं। तो बाबा ने कहा कि इतना अखुट है बाबा के पास कि आप ब्राह्मण आत्माओं के अलावा अगर सारी दुनिया की आत्माएं भी लेने के अधिकारी बन जाएं तो भी अथाह है, तो भी भगवान के पास देने की कमी नहीं है। लेकिन जो लेते हैं वो उसको लेकर के यूज करना और उसको बढ़ाना, उसमें नंबरवार हो जाते हैं, इसीलिए अंतर आ जाता है। तो जो जो खजाने हमें मिले हैं, ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना, समय का खजाना, श्वास और संकल्प, 6 खजाने बाबा ने हमें विशेष रूप से, ऐसे तो और भी हैं लेकिन जैसे हम कहते हैं बहुत शक्तियां, लेकिन अष्ट शक्तियां उसमें विशेष हैं। तो ये हमें जो खजाने मिले हैं वो हमें निरंतर यूज करते रहना है, स्व प्रति भी और औरों के प्रति भी। ऐसे नहीं यूज करना माना सिर्फ दूसरों के लिए ही करना है, नहीं, वो मेरे लिए भी उतना ही यूजफुल है, तो अपने प्रति भी हम यूज करेंगे तो भी वो बढ़ेगा, जमा हो जाएगा। तो ज्ञान का खजाना रोज बाबा हमारा ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करते हैं। शिव बाबा है ही ज्ञान के सागर और हमें ये पढ़ाई अंत तक पढ़नी है। नॉलेज को कहते ही हैं, नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम। दुनिया में भी जो ऊंची पढ़ाई पढ़ते हैं ना, वो उनकी कमाई ज्यादा होती है। जितना हायर स्टडीज करते हैं उतना ही अच्छा कमाते हैं। तो यहाँ भी पढ़ाई पर आधार है। पढ़ते तो हम सब हैं, मुरली तो सभी सुनते हैं, लेकिन एक है मुरली सुनना। मुरली सुना, खुश हुए। ब्राह्मण जीवन का एक नियम है हमारा, एक है वहां तक रह जाते हैं। दूसरे होते हैं मुरली सुना और सुन करके उसका स्वरूप बन गए, माना वही कर्म में आता है। जैसे भोजन को हमने खा लिया, तो भोजन खाना काफी नहीं है, लेकिन भोजन डाइजेस्ट भी होना चाहिए। जब वो भोजन पचेगा तभी वो हमारी शक्ति बनता है, तभी वो हमारा ब्लड बनता है, तभी वो हमारा मांस बनता है, यानी तभी वो यूजफुल होता है हमारे शरीर के लिए। अगर वो पचा नहीं तो ऐसे ही बाहर निकल जाएगा। तो ज्ञान भी जब तक पचा नहीं, मतलब जब तक हमने उसको अपना नहीं बनाया, इसीलिए बाबा कहता है मनन करना। विचार सागर मंथन करने के लिए बाबा हमें क्यों कहते हैं कि जब हम उस पर विचार सागर मंथन करते हैं, तब हमारे को सही समय पर सही ज्ञान की पॉइंट यूज होती है और हम विजयी बनते हैं। ज्ञान है ही हमें माया जीत बनाने के लिए। आज मानो प्यूरिटी का पेपर आता है, प्यूरिटी का पेपर माना अब कविकारों पर हम कैसे विजयी बनेंगे। ये जो ज्ञान के अस्त्र शस्त्र बाबा ने हमें दिए हैं, तो आज की दुनिया है ही तमो प्रधान दुनिया, और मानो आपके पुराने संस्कार वश आपको कहीं दैहिक आकर्षण होता है, और उसी समय जो आत्मा का ज्ञान हमें बाबा ने दिया वो हमने अपनी दृष्टि वृत्ति बना ली है। हमने आत्मा की दृष्टि से देखा। बाबा ने कहा मस्तक पर ही नजर जानी चाहिए, मस्तक के सिवाय और कहीं नजर जानी ही नहीं चाहिए। हम तो आत्मा रूप में सब भाई भाई हैं। तो जैसे ही वो भाई भाई की दृष्टि हुई तो आपकी दृष्टि शुद्ध हो गई, और जो माया वार करने वाली थी उस वार से आप बच गए, क्योंकि आपने सही समय पर सही पॉइंट को यूज कर लिया। फिर चाहे वो किसी और आत्मा की आपके प्रति दृष्टि हो या आपकी किसी और के प्रति हो, दोनों हो सकता है। अगर किसी और आत्मा की भी पतित दृष्टि पड़ रही है, उसी समय अगर मैंने अपनी उस दृष्टि को यूज किया, बाबा की दुआएं भी उसमें जुड़ जाती हैं, क्योंकि बाबा का दिया हुआ ज्ञान हम अपने स्वरूप में स्थित होकर यूज कर रहे हैं, तो हम विजयी बन जाते हैं। नहीं तो क्या होगा, बाबा कहता है देह को टच किया तो देह सांप की तरह है, और सांप को टच किया तो वो काटता है, और सांप काटेगा तो उसमें विष होता है, और फिर आप उस विष से बच नहीं सकते। तो ये है, हमने समय पर आत्मा का ज्ञान यूज कर लिया। मैं आत्मा आदि अनादि पवित्र स्वरूप हूँ, अपनी पवित्रता के गुण के स्वरूप में स्थित हो गए, तो हमने जमा कर लिया अपना, पास हो गए ना हम। वो परिस्थिति आई, पेपर तो होंगे, बिना पेपर दिए तो पास नहीं होंगे। और ऐसे ही जैसे हम कहते हैं कि जो सैनिक है वो अस्त्र शस्त्र का अभ्यास करते हैं, ताकि जब युद्ध हो और दुश्मन उनके सामने आए तो सही निशाना लगे, तो रोज अभ्यास करते हैं, एक दिन भी नहीं चूकते, क्योंकि अगर अभ्यास नहीं करेंगे तो निशाना चूक सकते हैं। आज एक ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेने वाला खिलाड़ी है, वो घंटों प्रैक्टिस करता है, साल भर मेहनत करता है, चाहे जो भी खेल खेलना हो उसको, चाहे वो बैडमिंटन खेल रहा है, चाहे वो टेनिस खेल रहा है, चाहे वो वेट लिफ्टिंग का कर रहा है, तो जाकर के वो खेलों के समय अपना बेस्ट प्रदर्शन करके मेडल जीत सकता है। अगर अभ्यास नहीं है तो मेडल तो जितना दूर हो तो क्वालिफाई भी नहीं होगा, गेम्स में खेलने लायक भी नहीं होगा। तो ये भी तो हमारे अस्त्र शस्त्र है ना, ज्ञान के अस्त्र शस्त्रों का रोज हमें अभ्यास करना है। रोज बाबा ने क्या कहा है ना, मेरा स्वरूप क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है, बाबा ने मेरी क्या क्या महिमा बताई, मेरे को क्या क्या सम्मान बाबा ने दिए हैं, जो भी बाबा ने हमें स्वधर्म स्वलक्ष्य स्वस्वरूप जो भी स्मृति दिलाई है उसे रोज रोज मुझे स्मृति में लाना है, उसका स्मृति स्वरूप बनना है, तब वो काम करेगा, तब निशाना लगेगा। मानो हम ड्रामा की पॉइंट कहते हैं, हाँ कोई हो गई अनहोनी हमारे साथ और हम कहते हैं चलो ड्रामा था, हो गया, जो हुआ सो हुआ, उसमें ही कल्याण था मेरा, ये बाबा ने हमें सिखाया है। तो अगर ये पॉइंट का अभ्यास मुझे पक्का है तो मेरा पॉइंट लग जाएगा, बिंदु लग जाएगा, ड्रामा का बिंदु मैं लगा सकूंगी और उसके बाद मुझे कोई व्यर्थ संकल्प नहीं चलेगा। ड्रामा में था ना, हुआ नथिंग न्यू, पहले भी बहुत बार पास किया है, अभी भी पास करना ही है। और नहीं तो क्या होगा, अभ्यास नहीं होगा तो ड्रामा ड्रामा बोलते भी रहेंगे और मन से हिलते भी रहेंगे, मन से दुखी भी होंगे, मन से परेशान भी होंगे, थोड़ा बहुत क्यों क्या में भी जाते रहेंगे, क्यों हुआ ऐसा, होना नहीं चाहिए, बाबा का बन गए, अभी बाबा ने भी मदद नहीं की, मतलब प्रश्नों में जाएंगे, फिर फरियाद करेंगे। माना हम ड्रामा की पॉइंट को अभी तक यूज करने की पावर अपने अंदर नहीं ला पाए, ड्रामा पर खड़े होना अभी तक हमें नहीं आया है। तो ज्ञान रत्नों की जो वैल्यू है, बाबा ने कहा एक एक ज्ञान रत्न लाखों रुपए का है, लाखों रुपए की कीमत का है, पर कई बार हम उन्हें साधारण समझ लेते हैं। बाबा तो रोज ही कहते हैं ना, जैसे कहानी आती है कि एक बार एक राजा जो है वो अपने नगर में भ्रमण कर रहा था वेश बदल कर। पुराने जमाने में ऐसे राजा करते थे, अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए, अपने नगर की व्यवस्था को समझने के लिए। तो उसको भूख लगी, थोड़ा प्यास लगी, तो गया वो, एक देखा किसान है, उसका खेत है और वहां उसने अपनी झोपड़ी बनाई हुई है। तो वहां जाकर उसने आवाज दी ना, पानी मिलेगा करके। तो किसान ने देखा कोई अतिथि आया है, तो उसने बहुत प्यार से उसको बिठाया, जो भी उसके पास था उसको खिलाया, उसको छाछ वगैरह दिया, सब कुछ, मतलब वो बहुत संतुष्ट हुआ उसकी जो आवभगत उसने की। तो राजा ने उसको सारा पूछा खेत के बारे में, क्या कमाई होती है सब। तो उसको समझ में आया कि गरीब है, किसान जो है वो गरीबी की हालत में है। तो उसको रहम आया, राजा था वो, तो उसने उसको कहा कि देखो इस ये तो खेती तुम करते हो, लेकिन इसके साथ साथ पास में ही एक चंदन का वन है मेरा, तो मैं आज से ये तुम्हारे नाम करता हूँ और तुम उससे अच्छी कमाई कर सकते हो। फिर ऐसा करके कह के राजा चला गया। अब वो किसान था, उसको तो चंदन का कुछ मालूम नहीं, चंदन क्या होता है। वो देखने गया तो देखा पेड़ है, जैसे जंगल में पेड़ होते हैं ऐसे पेड़ खड़े हैं। अब वो तो चूल्हा जलाता था, उसके लिए लकड़ी चाहिए होती थी उसको, तो वो खुश हो गया, चलो मेरे को जंगल काटने के लिए ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा, यही नजदीक में मुझे मिल गया। और उसने रोज वो चंदन के पेड़ काट करके अपने चूल्हे में जलाना शुरू कर दिया। कुछ साल हो गए, राजा फिर उस तरफ आया, तो राजा को उस किसान की याद आई। तो उसने सोचा अब तक तो वो किसान बहुत अच्छा हो गया होगा, उसको मैंने इतना मूल्यवान वो वन दे दिया, बहुत कमाई कर ली होगी उसने, अच्छा घरवर होगा अब उसके पास। पर आके देखा तो किसान उसी हालत में है। तो राजा ने उसको पूछा कि तुमने उसका क्या किया, तुमको मैंने वन दिया था, चंदन का वन दिया था। तो उसने कहा महाराज वो तो लकड़ी थी ना मेरे चूल्हे में जलाने के काम आ गई। तो कहा सारा वन पूरा चंदन का वन उसने चूल्हे में जला दिया। तब राजा ने उसको समझाया कि चंदन जो होती है वो लकड़ी कितनी मूल्यवान होती है, उसको तुम बाजार में बेचते तो तुमको कितना धन मिलता, और आज तुम इस हालत में नहीं एक अच्छे अपना जीवन यापन कर रहे होते। तो क्योंकि उसको उसकी वैल्यू नहीं मालूम थी, उसने उसका मूल्य नहीं समझा, तो उसको कैसे गंवा दिया, उसको राख बना दिया जला के। तो कई बार हमारी भी ये स्थिति होती है कि बाबा जो हमें इतना ऊंचा ज्ञान दे रहे हैं, इतना श्रेष्ठ बनाने वाला पुरुषोत्तम बनाने वाला ज्ञान दे रहे हैं, उसकी वैल्यू हम नहीं समझते, उसे साधारण समझ लेते हैं और उसे यूज नहीं करते। बाबा ने कहा ना मुरली में, संडे की मुरली में, कि पुराने संस्कारों को ही हम यूज करते रहते हैं और जो बाबा ने हमें ईश्वरीय संस्कार दिए हैं उनको लॉकर में रख देते हैं। बहुत लोगों की आदत होती है कि नई चीजों को तो रख देंगे और पुरानी चीजों को यूज करते रहेंगे, और फिर क्या होगा, पुरानी चीजों के साथ ही चले जाएंगे, वो नई चीजें अलमारी में ही पड़ी रह जाएंगी। और वो देख देख के खुश होते रहते थे कि भाई ये मेरे पास ये है ये है ये है इतना है। तो बाबा ने कहा कि बच्चों को ऐसा नहीं करना है, जो बाबा ने दिया है उसे यूज करना है। तो ईश्वरीय संस्कारों को यूज करो, ऐसे नहीं इतना मेरे अंदर ज्ञान है, बाबा ने तो हमें इतना ज्ञान दे दिया, पर वो ज्ञान है, ज्ञान को यूज तो करो, दूसरों को भी बांटो। दूसरों को बांटना माना जो भी हमारे मित्र संबंधी हैं, जितना हमने ज्ञान को अनुभव में लाया है उतना ही अनुभवी मूर्त बनकर जब हम उनको सुनाते हैं तो वो उनको भी लगता है, वो तीर उनको भी लगता है। और ये हमारी जिम्मेवारी है कि किसी का भी उलाना ना रहे। हमारे जो भी कनेक्शन में आत्माएं हैं, जो भी हमारे दायरे में, कम से कम 100 आत्माएं तो एक के दायरे में होती ही हैं, उन तक बाबा का संदेश जाना ही चाहिए। और अगर हमें सुनाना नहीं आता है तो हम उन्हें सेंटर तक तो ला ही सकते हैं, सेंटर के किसी प्रोग्राम में तो ला ही सकते हैं, माना उनको संदेश जरूर मिल जाए, ताकि वो लास्ट में ये ना कहें कि आपको पता था भगवान आया है और आपने हमें बताया ही नहीं, नहीं तो हम भी पुरुषार्थ कर लेते। तो जितना हमने ज्ञान बांटा उतना ही वो हमारा ज्ञान धन के लिए, विद्या धन के लिए। तो दुनिया में भी कहते हैं कि जितना हम दान करते हैं उतना ही वो और बढ़ता जाता है। और दूसरा खजाना मिला है हमको गुणों का खजाना। तो जब बाबा ने जो हमें सर्व गुण संपन्न बनाया है उन गुणों को हम अपनी धारणा में लाते हैं तो हम दूसरों को सुख देते हैं, स्वयं भी सुखी रहते हैं, दूसरों को भी सुख देते हैं, स्वयं भी संतुष्ट रहते हैं, दूसरों को भी संतुष्ट करते हैं, दूसरों को भी हम दुआएं देते हैं तो हमें भी दुआएं मिलती हैं। तो हम कैसे सेवा कर रहे हैं, अपने चलन से। और इसीलिए कहावत है कि एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, माना कर्मों की ध्वनि शब्दों से ऊंची होती है। उपदेश देना आसान होता है लेकिन वही चीज जब कर्म में होती है, जब लोग हमारे कर्मों में देखते हैं, हमारे चरित्र में देखते हैं, हमारे व्यवहार में देखते हैं, तो उनको भी हिम्मत आती है कि ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, ये भी तो घर गृहस्थ में रहते हैं, ये भी तो नौकरी करते हैं, ये भी तो धंधा करते हैं, ये भी तो अपने सारे समाज के कार्यों को निभाते हैं, फिर भी देखो इनका जीवन कितना पवित्र है, कितना श्रेष्ठ है, तो हम भी कर लेंगे। तो हम प्रेरणा देने के निमित्त बन गए। ये सेवा, ये ज्ञान सुनाने की सेवा से भी ऊंची सेवा। इसलिए बाबा कहते हैं गुण दान करना माना वरदानी मूरत बनना। हम सीधा ही हिम्मत देते हैं उनको। और इसीलिए हमारे समीप संबंधों में हम ज्यादा ज्ञान सुनाएंगे ना तो लोग नहीं सुनते हैं, इतना प्रभावित नहीं होते हैं, क्योंकि वो आपके कर्मों को देखते हैं और जानते हैं। वो अगर आपको दिखाई देते हैं कि पहले आप क्या थे और ज्ञान में आने के बाद आप क्या हो गए, वो सेवा करता है, वो उन्हें बाबा के समीप लाता है। और शक्तियों का स्टॉक हमारा जमा होना चाहिए। बाबा हमेशा कहते हैं कि अंत समय में आत्माएं आपके सामने आएंगी तो शक्तियां चाहेंगी, कितनी कमजोर होंगी हर तरह से आत्माएं, तो हमारे पास जब होंगी तभी तो हम उन्हें दे सकेंगे। अगर हमारे पास ही जमा नहीं है तो हम कैसे देंगे। तो सर्व शक्तियां जो बाबा ने हमें दी, मास्टर सर्वशक्तिवान बनाया, पहले तो हम यूज करें उन्हें। सहन करने की शक्ति है, कहाँ तक हमारी सहन करने की शक्ति काम करती है, कहाँ चाहिए हमें सहन शक्ति। ज्यादातर जब लोग हमसे कोई गलत व्यवहार करते हैं, कोई विघ्न रूप बनते हैं, कोई हमारा अपमान करते हैं, कोई हमें दुख देते हैं, तब उनके प्रति कोई भी व्यर्थ संकल्प न चले। बोलना तो दूर की बात है, लेकिन व्यर्थ संकल्प न चल के बल्कि उनके प्रति और ही रहम की भाव, उनके प्रति और ही शुभ भावना हो, उसको हम सहन शक्ति कहेंगे। तो क्या हम आत्माओं के प्रति ऐसा कर पाते हैं, वो कैसी भी हैं, जो कलयुगी आत्माएं हैं, जहां भी हम हैं, परिवार में हैं, अपने वर्क प्लेस पर, काम पर हैं हम, तो कोई ना कोई आत्माएं ऐसी होती ही हैं, सब तो नहीं होते लेकिन कोई ना कोई परीक्षा लेने वाली होती ही है, जो आए दिन आपके लिए कोई ना कोई विघ्न पैदा करती हैं, या कोई ना कोई ऐसा शब्द बोल जाएंगी जो आपकी अवस्था को हिला देगा। तो आप चुप तो रह जाते हैं लेकिन मन में नेगेटिव शुरू हो जाता है उनके प्रति, फिर सोचते हैं कहां तक सहन करेंगे, आखिर इसकी भी तो कोई लिमिट होती है। तो 10 बार तो सहन कर लिया लेकिन 11वीं बार सब बराबर। तो बाबा क्या कहता है, सहन हम क्यों करते हैं, क्योंकि शिव बाबा की आज्ञा है। बाबा की आज्ञा से हम सहन कर रहे हैं तो बाबा की दुआएं भी हैं, और इसीलिए सहन करना मरना नहीं है, लेकिन सहन करना क्या है, भविष्य में शहंशाह बनना है। सहन करने की शक्ति है तो हम शहंशाह बनने वाली आत्माएं हैं। तो शुरू में हमें धीरज रखना पड़ता है लेकिन उसके परिणाम बहुत सुंदर होते हैं। जैसे आज की मुरली में भी बाबा ने कहा ना, बंधन वाली आत्माएं हैं, धीरज धरो। और वो धीरज कैसे धरो, क्या करो, जो आगे आने वाले समय में सारे बंधन कट जाएंगे। फिर सहन करने के साथ समाना भी है। अब हम किसी के आगे सहन तो कर लेते हैं, कई बार मजबूरी से भी कर लेते हैं, लेकिन और दूसरे 2-4 लोग हैं उनके सामने हम बोल सकते हैं, तो अपने सहन करने को हम बड़ा चढ़ाकर बताते हैं, आपको पता नहीं मैं कितना सहन करती हूँ, यह करता हूँ। और फिर हमने वो वर्णन किया तो वो हमने 4 को सुनाया, वो और आगे 4 क्या मल्टीप्लाई करके सुनाएंगे। तो बाबा कहते हैं सहन किया वो तो कमाल किया, लेकिन उसे समाया नहीं, वर्णन करके उस कमाल को धमाल में बदल दिया। तो हमने जमा किया या गंवाया, हमारा कुछ भी, फिर वैसे हम खुश हो रहे हैं हमने सहन कर लिया देखो, लेकिन वो गंवा दिया हमने। सही समय पर सही शक्ति काम करे, वो भी परखने की शक्ति भी चाहिए कि कौन सी शक्ति कौन से समय यूज करनी है। सहन करने की बजाय सामना कर लिया, और सामना करने की बजाय सहन कर लिया ना, परिस्थितियों का तो हमें सामना करना होता है और व्यक्तियों को हमें सहन करना होता है। कई बार हम उल्टा कर रहे होते हैं, व्यक्तियों का सामना कर रहे होते हैं और परिस्थितियों को सहन कर रहे होते हैं। तो वो परखने की शक्ति काम करे। और फिर परखना माना माया के रॉयल रूपों को परखना। माया आज मोटे रूप में तो हम सब जानते हैं ये माया है, लेकिन माया सूक्ष्म रूप में आती है, वो भी रूप बदल बदल कर आती है, उनको पता है कि अब मुझे इस रूप में पहचान जाएंगे। जैसे रावण को सीता हरण करना था तो उसने कितने रूप बनाए। सबसे पहले उसने उसको भेजा, मरीच को भेजा, वो स्वर्ण हिरण का रूप लेकर गया तो सीता उसे नहीं पहचान पाई कि ये स्वर्ण हिरण है या कोई मायावी है। तो उसने राम को जबरदस्ती उसके पीछे लगा दिया कि मुझे ये चाहिए। दूसरा आकर्षण में भी आ गई ना, स्वर्ण हिरण के आकर्षण में भी आ गई। फिर राम ने उसको मारा तो उसने राम जैसी आवाज निकाल दी तो उसको भी नहीं पहचान पाई कि असल में राम की आवाज है या वो राक्षस की आवाज है। फिर उसके बाद लक्ष्मण ने रेखा खींची उसके लिए और फिर रावण आया साधु के रूप में तो नहीं पहचान पाई कि ये रावण है या असली साधु है। और फिर वो लक्ष्मण रेखा का भी उल्लंघन किया तो आखिर कहाँ चली गई, राम से उसका वियोग हो गया और रावण की जेल में चली गई। तो यहाँ भी माया जब सूक्ष्म रूपों में आती है तो आज मानो काम विकार के मोटे रूप को तो हम जानते हैं लेकिन उसका सूक्ष्म रूप है लगाव झुकाव फैमिलियरिटी प्रभाव में आना या किसी के गुणों से प्रभावित होना, किसी के ज्ञान से, किसी के योग से, किसी की पालना से, किसी की विशेषता से, कला से, व्यक्तित्व से, ना? हर एक के अंदर कोई ना कोई ऐसी विशेषता तो होती है और बाबा के बच्चों में भी सभी में कोई ना कोई ऐसी विशेषता तो है। और हम पहले उसके प्रभाव में आते हैं फिर झुकाव में आ जाते हैं। प्रभाव से झुकाव होता है, उनसे मिलना अच्छा लगता है, बात करना अच्छा लगता है ना, उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, फिर धीरे धीरे हम लगाव में आ जाते हैं। तो वो पहले फैमिलियरिटी का रूप लेता, अपनापन, ये ज्यादा अच्छे लगते हैं, ज्यादा अपने लगते हैं, ये ज्यादा मुझे सहयोग देते हैं, ज्यादा स्नेह देते हैं। और फिर कब वो माया के रूप में मेरी बुद्धि को बाबा से दूर कर देगा। बाबा को याद करने बैठेंगे, लगाव की निशानी क्या है, बाबा को याद करने बैठेंगे, बाबा याद नहीं आएगा। कौन याद आएगा? वो आत्मा जिससे आपको एक्स्ट्रा स्नेह हो गया है या मिल रहा है, दोनों ही बातें। तो बाबा कहता है स्नेह ठीक है, सबसे स्नेह रखो, वो तो बाबा हमें सिखाते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा में गए तो अंश आ गया, काम विकार का अंश, माया ने उसको हमसे दूर करने के लिए यूज करना शुरू कर दिया। बाबा से माया हमें दूर करती है, हमारा योग तोड़ाती है बाबा से और हम कमाई से वंचित हो गए। कि बाबा की याद से कमाई है या आत्मा की याद से कमाई है? आत्मा को याद करेंगे तो हिसाब किताब बनेगा, कर्म बंधन बनेगा। बाबा को याद करेंगे तब हम कर्म बंधन मुक्त कर्मातीत बनेंगे। तो माया के इन रूपों को भी हमें परखना है। सूक्ष्म रूपों को कई बार हम उसको बहुत साधारण रूप से, अरे ऐसा तो होता ही है ना, ऐसा तो चलता ही है ना, इतना थोड़ी होगा, ये तो सभी करते हैं। फिर दूसरों बड़ों बड़ों को भी देखना शुरू कर देते हैं, महारथी को भी, हाँ ये भी तो ऐसे करते हैं, मैंने भी किया तो क्या हुआ। पर देखना किसको है? बाबा को देखना है। फॉलो किसको करना है हमें? बाबा को फॉलो करना है। कोई महारथी आत्मा भी पुरुषार्थी है, वो भी गलती कर सकती है। तो ऐसे नहीं है कि हमें आत्माओं को फॉलो करना है। सी ब्रदर सिस्टर नहीं करना, सी फादर करना है ना? फिर हमारे लिए चाहिए निर्णय करने की शक्ति। कई बातों में हमें निर्णय लेना होता है। निर्णय लेना है तो जब हम उलझन में हैं, तो हम बाबा को देखें। ब्रह्मा बाबा अगर इस समय होते, ये जगह पर होते, तो क्या करते? आपको तुरंत समझ में आ जाएगा आपको क्या करना चाहिए। मानो कोई लोक लाज की बात है, सब प्रवृत्ति में रहते हैं, कई लोक लाज की बातें आती हैं, तो हम थोड़ा सा दुविधा में होते हैं, क्योंकि ज्ञान के अनुसार चलेंगे तो लोक लाज नहीं निभा सकेंगे। लोक लाज निभाने जाएंगे तो बाबा की मर्यादा से हम दूर जा रहे हैं। तो फिर बाबा को देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि बाबा ने लोक लाज की परवाह नहीं की। ये जो संगम युग पर हमें शिव बाबा मिला है, बाबा ने जो हमें श्रीमत दी, बाबा हमेशा श्रीमत पर चले। ये लोक लाज तो हम जन्मों से निभाते आए ना, फिर भी क्या मिला। और आप आज एक को खुश करोगे, दो को, चार को खुश करोगे, वो अभी खुश हो जाएंगे, कल फिर नाराज हो जाएंगे। कितना भी खुश कर लो, वो हमेशा तो खुश रहने वाले है नहीं। अब असल में हमें किसे खुश करना है? बाबा को खुश करना है। भगवान हमसे खुश है, उसकी दुआएं हमें हैं, तो हमारी कमाई ही कमाई है। तो हमें ब्रह्मा बाबा कुछ देख लेना है कि बाबा ने इस समय क्या किया, वही कर्म का निर्णय मुझे लेना है। और सामना करने की शक्ति भी हमें कदम कदम पर यूज करनी पड़ती है। अभी जैसे कोरोना जैसी परिस्थिति आ गई दुनिया में, सबने सामना किया, हमने भी किया, लेकिन हमारे सामना करने में और दुनिया के सामना करने में फर्क था, क्योंकि हमारे साथ बाबा है और हमें तीनों कालों का ज्ञान है। हमें ये भी पता है ये क्यों हो रहा है, इसलिए इतना भय नहीं हमको। जब हमें पता होता है ना उसके पीछे क्या राज है, तो निश्चित रूप से, जैसे डॉक्टर बीमारी के बारे में जानता है तो डॉक्टर को बीमारी का भय नहीं लगता, उसको पता है इस बीमारी का आदि मध्य अंत क्या है ना। एक साधारण व्यक्ति को तो नाम सुनते ही भय हो जाता है, तो ऐसे ही कोरोना का नाम सुनते ही लोगों को भय होता था। और कितने लोग सचमुच बीमारी से नहीं मरे, भय से मरे, लेकिन उस भय से बाबा ने हमें मुक्त रखा, क्योंकि हम त्रिकालदर्शी हैं, पता है कि ये तो होना ही है, अभी दुनिया का अंतिम समय है, कुछ ना कुछ तो ऐसा आता ही रहेगा, और बाबा हमारे साथ हैं। बाबा हमारे साथ है तो हमारे में वो शक्ति थी, और हमें ये भी पता है अगर चले भी गए, मानो है ना, अगर जाना भी हुआ, अगर इस बीमारी में ही जाना है, तो भी हमारा भविष्य उज्जवल है। हम जाएंगे, अच्छे स्थान पर जाएंगे, बाबा हमसे सेवा ही कराएगा, तो भविष्य क्या है वो भी हमें मालूम है। और बहुत गए भी सही, बाबा के बच्चे जो गए सब अच्छे, आगे बाबा ने कहा एडवांस पार्टी में खुशी खुशी शरीर छोड़ेंगे, तो आगे जाकर नई दुनिया की स्थापना में मददगार बनने वाले हैं। तो उस रीति से हमारी सामना करने की शक्ति बहुत बढ़ जाती है, वो हिम्मत हमारे अंदर रहती है। और हिम्मत है बच्चे, मदद है बाप, तो बाबा की मदद भी उतनी ही हमें मिलती रहती है। और असंभव चीजें भी संभव हुई हैं, ऐसे भी बहुत बाबा के बच्चों के अनुभव, ऐसे समय पर कैसे बाबा की मदद मिली, जो मन न चित, ऐसी ऐसी बातें हुई। और सहयोग देना, तो हम कहेंगे कि आवश्यकता के समय किसी के काम आना सबसे बड़ा पुण्य होता है, दुनिया में भी इस चीज को मानते हैं। तो यहाँ भी हम बाबा के बच्चे सभी के सहयोगी हैं, कोई भी आत्माएं उन्हें जिस भी तरह से आवश्यकता है और हम सहयोग कर सकते हैं, तो जरूर हमें उनका सहयोगी बनना है। और विशेषकर यज्ञ की सेवाओं में तो हम तन मन धन से सहयोगी बनते, बाबा के कार्य, ईश्वरीय कार्य में तो हम सब एक एक उंगली अपनी लगाते हैं, यथाशक्ति यथा योग्य जो सेवा, बाबा कहते हैं ना हड्डी हड्डी सेवा करनी है हमें, जितना हम सेवा में हड्डी लगाएंगे, उतना ही, जितना हम बाप पर बलिहार जाएंगे उतना ही बाबा भी हम पर बलिहार जाएगा, उतना ही हम प्राप्तियों के अधिकारी बनेंगे। सेवा हमारा भाग्य बनाने वाली है, सेवा से ही हम सहयोगी बनते, तन मन धन तीनों तरह से हम सेवा करते हैं, मनसा वाचा कर्मणा से भी हम सेवा करते हैं। और सेवा कमाई करने का साधन है, भाग्य बनाने का, भाग्य को बढ़ाने का साधन है। बाबा ने हमें ये कलम अपने हाथ में दे दी है, हम जितना चाहें उसको चलाएं, यूज करें। तो मनसा सेवा क्या है? संकल्प की जो शक्ति है हमारी, उस संकल्प की शक्ति को, शुद्ध संकल्प की शक्ति को, सबके प्रति कल्याण की भावना के लिए यूज करना, सबके प्रति शुभ भावना देने के लिए यूज करना या सभी आत्माओं के प्रति सुख शांति के वाइब्रेशन, शक्तियों के वाइब्रेशंस देने के लिए यूज करना, लाइट हाउस, माइट हाउस हम बने विश्व की आत्माओं के लिए, ये मनसा से बाबा कहता है सेवा आप करते रहो। फिर चाहे आप स्थूल काम करते हो, चाहे आप वाचा सेवा करते हो, उसमें भी मनसा को ऐड करो। डबल सेवा करेंगे तो डबल कमाई होगी, एक समय में सिंगल सेवा मत करो, डबल सेवा करो। जैसे आज बाबा ने कहा कि काम करते हुए, हाँ, खाना बनाते हुए भी क्या करो, क्या बोला बाबा ने, माताएं खाना बनाती हैं तो खाना बनाते हुए भी क्या करो, बाबा को याद करो। तो बाबा की याद में कहा पति बच्चों की याद में खाना बनाते हैं, तो ये कौन है, पतियों का पति है, तो जब इनकी याद में खाना बनाएंगे तो वो खाना हमारा साधारण भोजन नहीं, ब्रह्मा भोजन हो जाता है। और कमाई भी, याद की कमाई भी जमा कर ली हमने काम के साथ साथ। तो ऐसे घर में रहते हुए भी हम सेवा कर सकते हैं। हाँ, जरूरी नहीं है अभी सेंटर पर हम प्रोग्राम प्रमाण सेवा करते हैं, जब भी सेवा का प्रोग्राम मिलता है तब, चाहे वो स्थूल सेवा हो, सूक्ष्म सेवा हो, जो भी वो हम करते हैं। लेकिन अगर वो चांस नहीं है तो भी घर में रहते हुए भी अगर हम उसे बाबा की दी हुई श्रीमद के अनुसार अपनी स्मृति वृत्ति रखते हुए कार्य करते हैं तो वो भी सेवा हो जाती है। तो हम निरंतर सेवाधारी हैं, जैसे कहा निरंतर योगी हैं, योगी जीवन है हमारा, योगी जीवन वाले हैं, ऐसे ही हम निरंतर सेवाधारी भी हैं। अब वाचा सेवा है तो हमारी वाचा कैसी होनी चाहिए, जब भी हम किससे मिलते हैं तो जितना हमारी वाणी दूसरों को सुख देने वाली होगी, उनका उमंग उत्साह बढ़ाने वाली होगी, उनको आगे बढ़ाने वाली, हिम्मत देने वाली, उनमें आशा का संचार करने वाली, जो भी हम कहें, मतलब उनका किसी भी तरह से विकास हो, जो हम उन्हें कहते हैं, जैसे बाबा मम्मा बोलते थे तो बच्चों के लिए वो वरदान बन जाते थे बोल, माना इतना उनको लग जाते थे कि उनका जीवन ही बदल जाता था। तो ऐसे हमारे बोल हों तो बोल भी सेवा करता है। और अगर हमको फालतू बोलने की आदत है, हाँ, वाणी तो वाणी से सेवा नहीं होगी। होता है ना, कुछ लोग बिना मतलब ही बातों का विस्तार करते रहते हैं, बात होती है छोटी और उसको राई को पहाड़ बना देंगे। तो फिर कोई भी हमारी बात पर विश्वास भी नहीं करेगा अगर हम किसी को कुछ समझाना भी चाहेंगे ना। जैसे है मम्मा का मास चल रहा है अभी, तो मम्मा के लिए हम क्या सुनते हैं, मम्मा बहुत गंभीर थी, जहाँ बहुत आवश्यक होता था मम्मा वहाँ ही बोलती थी। और मम्मा कितनी भी सेवा करती थी कभी वर्णन नहीं करती थी। मम्मा बाबा जैसी सेवा तो कोई भी नहीं करते हैं, नंबर वन रहे वो। लेकिन फिर भी जैसे होता है ना, लोगों को अपना नाम मन शान की इच्छा होती है, सेवा जो हम करते हैं वो जितना निर्विघ्न है, जितना निस्वार्थ है, जितना निमित भाव से की गई, उतना उसका फल पूरा जमा होता है। सेवा हम सभी करते हैं क्योंकि सेवा करना तो सहज भी है, वैरायटी सेवाएं हैं, काम करने के हम अभ्यस्त होते हैं। लेकिन क्या होता है, अगर मैंने अपने पुराने संस्कार मिक्स कर दिए, मैंपन आ गया, मेरापन आ गया, थोड़ा ऐसे भी आ गया कि इतनी सेवा मैंने की, मेरा नाम तो लिया ही नहीं इन्होंने, इतनी सेवा मैं करती हूँ, पूछते भी नहीं है मुझको, थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं आ जाता है, फीलिंग आ गई मानो, है ना, थोड़ा भी मान शान का अगर आ जाता है, हम इतना धन सफल करते हैं, कहीं हमारा नाम नहीं। दुनिया में तो क्या होता है, धन लगाएंगे ना थोड़ा भी तो पूरा उनका बोर्ड पर बोर्ड लगा देंगे उनके नाम से, इन्होंने इतना धन लगाया मंदिर में या अस्पताल में या धर्मशाला में, जहां भी। तो बाबा क्या कहता है, अगर हमने उसका फल यहीं स्वीकार कर लिया तो हमने उसको यहीं खा लिया, वो हमारा जमा नहीं होता है। तो ये सब चीजें अगर हमारी सेवा में आती हैं तो ये विघन रूप हैं और हम कच्चा फल यही खा रहे हैं, कर भी रहे हैं खा भी रहे हैं। ऐसे होता है ना, रोज रोज की कमाई खाने वाले, और दुनिया में भी होते हैं ना, वैरायटी होता है, जो मजदूर होते हैं वो क्या होते हैं, रोज कमाने वाले रोज खाने वाले होते हैं, जो मिडिल क्लास होती है वो क्या होती है, सारा महीना कमाती है, जो भी अमाउंट मिलता है उसमें से फिर कुछ बचत भी करते हैं, खाते हैं, और इतना उनके पास होता भी है कि कोई आवश्यकता पड़े, इमरजेंसी हो तो वो बचत भी रख लेते हैं, और कुछ तो इतना कमाते हैं कि उनका इतना जमा होता है कि उसी से और कमाई होती जाती है, खर्च तो छोड़ो, फिर कहते हैं धनी धन को कमाता है। तो बाबा के भी नंबर वार हैं बच्चे कमाने वाले हैं ना, कुछ होते हैं रोज कमाते हैं रोज खा लेते हैं। मैंने अमृत वेला किया, मुरली सुनी, कमाई किया, और फिर सारे दिन में थोड़ा समय तो पास हो गए, जो भी हमारे सामने आते हैं पेपर, मानो मुरली सुन के गए तो बैटरी चार्ज है ना, उस समय किसी ने आके कुछ बोल दिया तो भी हमने शांति से बात की, प्यार से बात की, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, दो घंटे तो बढ़िया गए, उसके बाद बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, और हमने मुरली का मनन तो किया नहीं है ना, तो क्या हुआ, फिर पुराने संस्कार शुरू हो गए। अब कोई सामने आया, उसने एक बोला तो मैंने चार बोल दिया, बाद में भले याद आता है, अरे मेरे को तो चार नहीं बोलना था, तो क्या किया मैंने, यहाँ पर एक का सौ गुना, बाबा कहते ना एक का पदम गुना कमाते हैं तो ज्ञानी है, और अगर हमने गलत कर्म कर दिया तो उसका सौ गुना दंड भी है, उसकी उसका विकर्म भी उतना ही बनेगा, फिर वो बीच का फल वही फल है, ऐसे नहीं मल्टीप्लाई होता है, तो ऐसे हम गमाते हैं। तो रोज का रोज अगर हम खत्म करने वाले हैं तो भविष्य कमाई फिर हमारी जमा नहीं होती, और अगर हमने डिससर्विस कर दी, सेवा करते करते कई लोग डिससर्विस भी कर देते हैं, यानी बाबा का नाम बदनाम करने के निमित्त बन जाते हैं किसी भी कारण से, मानो हमारी कोई चलन ऐसी चली हमने जो बाबा का नाम बदनाम होता है, तो अगर आपने एक बार डिस सर्विस की तो आपकी 10 बार की सर्विस को वो खत्म कर देगी, और अगर किसी विकार के वश हो गए, मानो जिसमें बाबा काम विकार को तो बहुत ज्यादा कहता है कि ये ऐसे हैं जैसे 10वीं मंजिल से गिरने के समान है ना, साकार मुरली में बाबा ये शब्द कहते हैं कि कमाई चट हो जाती है, अब तक की जितनी भी कमाई आपने की, आप ज्ञान में चलते हैं सालों से और कभी एक बार विकार के वश हो गए तो उसके पहले तक जो कमाई आपने की थी सब ब्लैंक, सारा माइनस हो जाता है। तो ये कर्मों की गुह्य गति है जो बाबा हमें समझाते हैं, तो वो जमा का हिसाब ऐसे है, इसीलिए हमें थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है कि हम जो कमाई कर रहे हैं वो इतनी ऊंची कमाई कर रहे हैं, पद्मा पदम पति बन रहे हैं, तो उसमें कहीं हमारा घाटा ना हो जाए। आज भी बाबा ने व्यापारी की बात की ना, व्यापारी क्या करते हैं, अपना पोता मेल रखते हैं, तो अपने को घाटा नहीं होने देते वो कभी भी, रोज रात को सोने से पहले अपना पोता मेल निकालते हैं, तो हमें भी अपना जमा का खाता चेक करते रहना है, और जिसका खाता भरपूर होगा बाबा कहता है उसके चेहरे से दिखाई देगा, जो चेहरा होगा उसमें ईश्वरीय नशा होगा, भविष्य का भी नशा होगा, खुशी होगी, जैसे दुनिया में भी जो अच्छे खाते पीते घर के लोग होते हैं उनके चेहरे से नजर आता है कि ये भरपूर हैं, और फिर उनकी नजर कोई छोटी छोटी बातों में उनकी बुद्धि नहीं जाती है, क्योंकि प्राप्त है ना, तो इसीलिए कोई ऐसी चीजों के आकर्षण हो नहीं, नजर जाएगी ही नहीं। तो यदि हमारा खाता भरपूर है, जमा का खाता भरपूर है, तो हमारी सूरत ही सर्विसेबल होगी, सूरत से दिखाई देगा वो कि इनके ईश्वरीय कमाई कितनी है। तो हमें अपनी चेकिंग रखनी है, अपने जमा के खाते का हिसाब रखना है। और ऐसा नहीं बाबा ने तो हमें बहुत दिया है लेकिन हमने उसको अलमारी में बंद करके रखा है, यानी बुद्धि रूपी अलमारी में उसको बंद करके रखा है। अरे गुण भी बहुत हैं, शक्तियां भी बहुत हैं, ज्ञान रतन भी बहुत हैं, और कितना वैल्यूबल समय दिया भगवान ने हमें, लेकिन यूज करते रहो उसको। जितना यूज करेंगे उतना ही वो हमारा सफल होगा और हम जमा करते जाएंगे और सफलता को भी पाएंगे। बाबा दूसरे शब्दों में कहते हैं सफल करो सफलता पाओ। ओम शांति।
बहुत बहुत थैंक्स डॉक्टर सबिता बेन। संगम के अंत समय में कैसे यूज करना है और कैसे सफल करके सफलता को पाना है, तो चलो हम बाबा के पास चलते हैं। अपने आप को बाबा के सामने संकल्पबद्ध करेंगे कि अपने इस संकल्प से हम हमारे जमा के खाते को बढ़ाएंगे।
देते चले प्यार, देते चले प्यार प्रभु का लुटाते चले।
देते चले प्यार, देते चले प्यार प्रभु का लुटाते चले।
दीप राहों में जलने लगेंगे, जीवन सभी के संवरने लगेंगे। देते चले,
देते चले प्यार, देते चले प्यार प्रभु का लुटाते चले।
सी मुस्कानों से जग शीतल हो जाएगा, स्नेह भरे तो बोलों से पत्थर पानी हो जाएगा। निर्मल सी मुस्कानों से जग शीतल हो जाएगा, स्नेह भरे तो बोलों से पत्थर पानी हो। ईश्वर की पहचान बने, प्यार प्रभु का लुटाते चले।
ईश्वर की पहचान बने, प्यार प्रभु का लुटाते चले।
दीप राहों में जलने लगेंगे, जीवन सभी
चले।